आमोस अध्याय पांच, आमोस अध्याय पांच पद एक। हे इसराइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। वो इसराइल के घराने के लिए रोता है। आमोस अध्याय पांच पद दो। इसराइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ ना सकेगी। वो अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं। कुछ लोग इस पद का ऐसा अनुवाद करते हैं कि मानो परमेश्वर ने इसराइल को सदा के लिए त्याग दिया और अंतिम दिनों में भी परमेश्वर की आत्मिक दया से उनकी पुनःस्थापना न होगी। ये संपूर्ण वचन का इनकार करना है। ये केवल उस समय इसराइल को थोड़ी देर के लिए काटने की बात है। वे अशूरों की गुलामी में जा रहे थे। वे पूरे संसार में तितर बितर होने वाले थे। लेकिन तो भी सब नबियों ने और आमोस ने भी अंतिम अध्याय में परमेश्वर के बारे में कहा कि वह अपने लोगों से व्यवहार और कार्य करता है। अंतिम दिनों में अपने प्यार से पुनःस्थापना के लिए कहता है। उसे उठाने वाला कोई नहीं था। वो स्वयं उठ नहीं पाएगी और दूसरा उसे उठाएगा नहीं। लेकिन वचन बताता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर उसको एक बार फिर महिमा और आदर के स्थान तक उठाएगा। वो उसको एक बार फिर दुल्हन ग्रहण करेगा जो अनाज्ञाकारी हो गई और फिर अपने पति के पास लौट आई है। आमोस अध्याय पांच पद तीन। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, जिस नगर से हजार निकलते थे उसमें इसराइल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे, वे समाप्त कर दिए जाएंगे। आमोस अध्याय पांच पद तीन में आगे लिखा है, और जिससे सौ निकलते थे उसमें दस बचे रहेंगे, वे समाप्त कर दिए गए थे। इसराइल के साथ ऐसा ही हुआ था। आमोस अध्याय पांच पद चार। यहोवा इसराइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर सहायता करने के लिए अब भी प्रस्ताव रखता है। उनके लिए आशा का एक प्रस्ताव, यदि तुम मेरी खोज में लगो तो स्थिति बदल सकती है। तुम्हें दंड नहीं भोगना होगा, तुम्हें बंधुआई में जाना नहीं पड़ेगा। यदि तुम मेरी खोज करो तो स्थिति बदल जाएगी। परंतु उन्होंने उसे नहीं खोजा। परमेश्वर कहता है, आमोस अध्याय पांच पद पांच। बेतेल की खोज में ना लगो, बेतेल में बछड़े और मूर्ति पूजा मत करो। आमोस अध्याय पांच पद पांच और छह। ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो। ये फिर दोहराया गया है। आमोस अध्याय पांच पद छह में आगे लिखा है, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वो उसे भस्म करेगी और बेथेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। यूसुफ का घराना अर्थात एप्रेम के संदर्भ में ये कहा गया है, जो इसराइल के उत्तरी राज्य में सबसे बड़ी जाति थी। आमोस अध्याय पांच पद सात और आठ। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कछपचिया और मृग शिरा को बनाने वाला है। वो सितारों के सप्त ऋषि मंडल की बात कर रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे शहर में अधिक प्रकाश के रहते हुए इसे देखना कठिन होता है, परंतु यदि आप शहर से बाहर निकल जाएं, तो वहां आकाश में सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहां मृग शिरा का वर्णन भी है जो दक्षिण आकाश में दिखाई देने वाला सितारों का समूह है। आपको अपनी कल्पना का प्रयोग करना होगा और आप मृग शिरा के कोने देख सकते हैं और वो कमान जैसे चीज जो उसके सामने दिखाई पड़ती है। वो देखने में स्पष्ट न हो परंतु एक धुंधली आकृति अवश्य बनाती है, जैसे एक भैंस पर बैठकर कोई निशाना लगा रहा हो और आप सिर्फ उसके सींग देख पाते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से देखें, ऐसा लगता है कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं। मृगशिरा दक्षिण की तरफ चलता है, कुत्ते पीछा करते हैं और वो दक्षिण आकाश में पूर्वी गोलार्ध की तरह नीचे चला जाता है। लेकिन मृगशिरा एक मोहित करने वाली स्पष्ट पहचान में आने वाली सर्दियों की कृतिका है। यहां एक लड़का है जो चरवाह है और वो प्रकृति के करीब रहता है, अधिकतर घर से बाहर जंगलों पहाड़ों में। वो सात सितारों के बारे में कहता है, परमेश्वर जो कच्छ पचिया और मृगशिरा को बनाने वाला है उसकी खोज करो। मृगशिरा की कृतिका में उसके बाएं कोने पर बेथेल गेयूस सितारा है जो परिधि में 415 लाख मील बड़ा है। यदि आप बेथेल गेयूस को मध्य से ऐसे काटे कि उसका बचा हुआ भाग 100 लाख मील मोटा रह जाए तो आप सूर्य को उसके बीच में डाल सकते हैं और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमे तो भी कुछ लाख मील बच जाएंगे। प्रभु ने मृगशिरा को बनाया और बेथेल गेयूस उसका बायां किनारा है। प्रभु ने कच्छ पचिया और मृगशिरा को बनाया है, उसकी खोज करो। इन सोने की छोटी मूर्तियों को जो तुमने बनाई है, इससे कुछ लाभ ना होगा। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा से कोई लाभ ना होगा। उन देवताओं से जिसे तुमने अपनी कल्पना से बनाया है, लेकिन सच्चे और जीवित परमेश्वर से लाभ होगा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसको खोजो। जो कचपचिया और मृगशिरा को बनाने वाला है उसकी खोज करो। आमोस अध्याय 5 पद 8 से लेकर 11 तक। जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वो तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता और गढ़ को भी सत्यनाश करता है। जो सभा में उलाना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अनहर लेते हो। वे कंगालों को लताड़ते थे, अमीर गरीबों को काट डालते थे। कितनी दर्दनाक बात है क्योंकि तुम ऐसा करते हो, प्रभु कहता है। आमोस अध्याय 5 पद 11 में आगे लिखा है, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, तुमने गरीबों को लूट कर अपने भव्य भवन बनाए हैं, इसलिए परमेश्वर घोषणा करता है। आमोस अध्याय 5 पद 11 के अंत में लिखा है, उनमें रहने ना पाओगे और जो मन भावनी दाग की बारियां तुमने लगाई है उनका दाक मधु पीने ना पाओगे। उत्तरी राज्य महिमा और वैभव के शिखर पर था, लेकिन वे उससे कोई लाभ ना उठा पाएंगे। आमोस अध्याय 5 पद 12 से लेकर 15 तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुपका रहे क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। हमें यहां ये उपदेश दिया गया है कि भलाई से प्रीति रखें, बुराई से नहीं, अपितु बुराई से भैर और भलाई से प्रीति रखें। आपको याद होगा आयुब की पुस्तक में जब शैतान परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पुत्रों के साथ आया, आयुब अध्याय 1:7-8, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हर तरह का दबाव है कि हम बुराई से घृणा ना करें, वरन उसे सह लें। यदि आप बुराई से घृणा करेंगे तो आपको बूढ़े गधे की तरह तुच्छ समझा जाएगा। यदि आप बुराई से घृणा करते हैं तो अपने आप को मूर्ख सिद्ध करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है, लेकिन हम मूर्खों के समय में रह रहे हैं। लोग बुराई से प्रीति रखते, बुराई में चलते और बुराई सहते हैं, परंतु बुराई से बैर ही परमेश्वर का भय मानना है। क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं बुराई से घृणा करता हूं, इसलिए बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। आमोस अध्याय 5:15 में आगे लिखा है, और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्या जाने परमेश्वर अनुग्रह करे, यदि तुम लौट आते हो सकता है परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे, लेकिन तुम तो विनाश के लिए तैयार हो। इसलिए मन फिराओ, बदलो और परमेश्वर की खोज करो। आमोस अध्याय 5:16। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। हाय हाय पूरी निराशा को दर्शाता है। जब आप कहते हैं हाय हाय, तब इसका अर्थ है घोर निराशा। हम इन शब्दों का प्रयोग अब नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ खो जाने का प्रतीक है। आमोस अध्याय 5:16 में आगे लिखा है, वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं, उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे। उनके पास व्यवसायिक पेशावर रोने वाले हुआ करते थे, वे रोने में निपुण होते थे। यदि आपके यहां मृत्यु हो गई तो आप इन व्यवसायिक रोने वालों को बुला सकते हैं, वे आकर बुरी तरह रो सकते हैं ताकि लोग ये कहें, ओह मरने वाला बहुत ही प्रेमी मनुष्य रहा होगा, क्योंकि देखो वे कैसा विलाप कर रहे हैं। अतः ये लोग विलाप करने में निपुण होते थे। मेरी पत्नी को चीखने में महारत प्राप्त है, इससे हमें कुछ लाभ भी हुआ। जब भी हम समुद्र के किनारे लंबे समय के लिए जाते, हम समुद्र तट पर बेलन नुमा झूले में झूलते। जैसे ही झूला पहली चढ़ाई के बाद नीचे आता, वो चिल्लाने लगती और तब तक चुप न होती जब तक झूला रुक न जाता, और वे हमसे हमेशा कहते, आप फिर से झूलो। इस प्रकार हमें 3-4 चक्कर और मुफ्त में मिल जाते, क्योंकि समुद्र तट पर उपस्थित सब लोगों का ध्यान उस बेलननुमा झूले की तरफ खिंच जाता था। ऐसे मैंने बहुत बार झूला झूला है। इस प्रकार झूलने में मजा आता तो नहीं था, क्योंकि बार बार झूलने के बाद आप उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन मेरी पत्नी की चिल्लाने की निपुणता हमें मुफ्त में झूला झूलने के अवसर प्रदान करती थी। आमोस अध्याय 5 पद 17 और 18। और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो जो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। वे परमेश्वर के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन और पापों के कारण प्रभु का दिन उनके लिए महिमा का दिन नहीं होगा। ये दिन उनके लिए न्याय का और अंधियारे का दिन होगा। उनके लिए जो प्रभु के सेवक है, वो दिन महिमा का दिन होगा, जब वो अपना महान राज्य स्थापित करेगा। हमारी यही आशा है। इस प्रकार प्रभु के दिन से ये तथ्य जुड़ा हुआ है, बुराई और दुष्टता से प्रेम करने वालों के लिए दंड और क्रोध के दिन तथा धर्मियों के लिए महिमा का दिन। ये वही दिन है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो पाप करते हैं, हाय, जब प्रभु का दिन आएगा। ये ऐसा होगा मानो एक मनुष्य सड़क पर जा रहा है और शेर ने आक्रमण किया, परंतु वो बच गया। परंतु वो अभी बहुत आगे नहीं गया था कि भालू ने उस पर आक्रमण कर दिया। वो भालू से भी बच गया और पूरी तरह थका हुआ था, शेर और भालू से बचकर भागते हुए आखिर घर पहुंच गया। उसने अपने घर की दीवार का सहारा लिया तो वहां एक सांप था जिसने उसे काट लिया और वो मर गया। मेरा कहने का अर्थ है, तवे से निकलकर आग में गिरना। आमोस यही उपमा दे रहा है। आमोस अध्याय 5 पद 19। जैसे कोई सिम से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको ढसे, अर्थात वे बच नहीं सकते थे। जब वे सोचते थे कि बच गए, तभी वे नाश कर दिए जाएंगे। आमोस अध्याय 5 पद 20। क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ चमक ना हो। अब परमेश्वर घोषणा करता है, आमोस अध्याय 5 पद 21। मैं तेरे पर्वों से बैर रखता। पर्वों के दिनों में उन्हें आकर परमेश्वर की संगति करनी है, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। तुम अपने बलिदान लाओ और याजक मेमने की चर्बी परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाए। उद्देश्य ये था कि प्रभु के साथ संगति करके आनंद मनाया जाए। लोग प्रभु के सम्मुख जमा होते, लेकिन परमेश्वर एक स्थान पर कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। वे मेमने की चर्बी जलाते थे जिसका धुआं ऊपर परमेश्वर के पास उठता। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। उद्देश्य ये था कि अच्छी खुशबू प्रभु तक पहुंचे और परमेश्वर मेमने की चर्बी के जलाए जाना या भूनने के आश्चर्यजनक खुशबू सूंघे। परमेश्वर कहता है, आमोस अध्याय 5 पद 21 और 22, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर ना तो बाहरी विचारों को और ना बाहरी रिवाजों को देखता है। परमेश्वर का ध्यान दिलों के पश्चाताप में है। ध्यान दे, जो बलिदान परमेश्वर को वे चढ़ा रहे थे उसमें पाप बलि का उल्लेख नहीं किया गया है। वे लोग होम बलि और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाते थे, लेकिन पाप बलि का कोई वर्णन नहीं है। परमेश्वर इसी बात में रुचि रखता है कि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, कि वे अपने अधर्म से फिरे। क्या यदि दो सहमत ना हो तो वे एक साथ चल सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। इसलिए सब धार्मिक कार्य व्यर्थ ठहरेंगे यदि तुम्हारा मन परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप ना करे। बहुत लोग हैं जो धार्मिक कार्यों को करते हैं, जैसे यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझको तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वे सब कुछ तो अच्छा करते थे, परंतु परमेश्वर के लिए प्रेम उन्होंने छोड़ दिया। बहुत से लोग आज धार्मिक कार्यों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति उनके मन एक निष्ठ नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे मन को खोजता है जिनके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम, भलाई के प्रति प्रेम और मनुष्यों के प्रति प्रेम भरा हो। वो मात्र धार्मिक बंधनों को नहीं चाहता या धार्मिक वातावरण, धर्म या धार्मिक रीतियां, लेकिन वो एक जलन रखने वाला मन को चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी सारंगियों का सुर ना सुनूंगा, मैं तुम्हारे बलिदान को ना ताकूंगा और ना ग्रहण करूंगा। आमोस अध्याय 5:24। परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खरा जीवन जियो और अभी ही आरंभ कर दो। सीधाई और सच्चाई अपनाओ और धर्मी बनो। यही मैं चाहता हूं, परमेश्वर कहता है। आमोस अध्याय 5:25 से लेकर 27 तक। हे इसराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे। नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरणपीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और वे दमिश्क के उस पार बंधुआई में चले गए, अर्थात बंधुआ बनाकर अशुरों के देश ले जाए गए। आमोस अध्याय 5:27 में आगे लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, इस समय अशूर नहीं दमिश्क उनके लिए डर का कारण था, राजा हजाएल उनके बड़े डर का कारण था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, देखो वे एक न हो पाएंगे, तुम बंधुआई में अशूरों के देश तक जाओगे। फिर से परमेश्वर का अद्भुत वचन कैसा सत्य होता है, आप उस पर निर्भर रह सकते हैं। आओ हम प्रार्थना करें। पिता, हमारी सहायता कर कि हम वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु करने वाले हो जाएं। प्रभु, सहायता कर कि हम तेरे लोगों के इतिहास से सीखें। प्रभु, हम तेरे सम्मुख सच्चाई, धार्मिकता और सच्चे विवेक के साथ आ सके। प्रभु, हमारे मन में भलाई से प्रेम और बुराई से घृणा उत्पन्न कर हम अपने पूरे हृदय से तुझे ढूंढें, ये जानते हुए कि जिस दिन हम ढूंढेंगे तुझे पाएंगे। ओह प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदयों में आग की तरह प्रज्वलित हो और एक तलवार की तरह हम में से शारीरिक और आत्मिक बातों को अलग अलग कर दे, जिससे कि हम शारीरिक नहीं आत्मिक बातों में ऊपर उठे। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे और अपनी आत्मा एवं प्रेम से भरे तथा अपनी सुइच्छा के निमित्त आपका मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम में।